ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् रूपानुगाचार्य वर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरण कमल का आश्रय लेकर आज की कथा को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यदि शिला प्रभुपाद जी अपनी असीम अनुकंपा से इस जगत को धन्य नहीं बनाते, कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित नहीं करते, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करते, तो मैं यहाँ इस क्षण इस काल कार्तिक के पावन पर्व में वृंदावन के पावन भूमि में दामोदर अष्टक का चिंतन करते नहीं बैठता। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रत्येक प्रमुख आचार्य जिन्होंने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी इस कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति के प्रचार को आगे बढ़ाया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्रियाशील होकर प्रचार किए हैं, भजन में उन्मुख रहे हैं, अंतर्मुख रहे हैं और करुणा और असीम अनुकंपा के भाव से इस भक्ति की धारा को प्रवाहित किए हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रत्येक प्रामाणिक आचार्य को मैं प्रचुर भूरी भूरी दंडवत देकर अपने सिर झुकाता हूं। अंततो गत्वा यदि चैतन्य महाप्रभु इस भूतल पर अवतार नहीं लेते तो राधा श्याम सुंदर की असीम महिमा का वर्णन को ही नहीं कर पाता। सभी वैष्णव वैष्णवी वृंद त्रिदंडी गोस्वामीगण वरिष्ठ वैष्णवीगण वैष्णवगण जो सालों साल इस सुंदर श्रील प्रभुपाद जी के छत्र छाया में इस्कॉन इस संघ में भाग लिए हैं, सदस्य हैं, साधक के भाव से प्रारंभ करके सिद्ध के रूप में अब उपस्थित हैं, आप सबके चरण में मैं दंडवत देता हूँ। अंततो गत्वा सभी वैष्णव वैष्णवी वृंद अपना समय देकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। यदि एक व्यक्ति अकेले बैठे हो तो एक घंटे से ज़्यादा वो भगवत स्मरण नहीं कर सकता, परंतु आप सब यहाँ इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि इतने आँख इतने नेत्र जब एक व्यक्ति पर देखे वो चूक नहीं सकता, उसको एक घंटे बैठकर प्रामाणिक तौर से कृष्ण स्मरण करना पड़ता है, कृष्ण चिंतन करना पड़ता है, कृष्ण गुणगान करना पड़ता है, तो आप सब समय दिए इसलिए वांछा कल्पत रूप है कृपा। आपके विशेष कृपा से सही समय पर सही भाव से सही शब्दों के प्रयोग से यशोदा दामोदर की स्तुति हो सके, ये एकमात्र लक्ष्य एकमात्र इच्छा है। विशेष करके परम पूज्यपाद श्रीपाद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को मैं दंडवत देकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से मैं कुछ बोल पाऊँ। महाराज जी ने आदेश दिया है इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ। तो आज श्लोक क्रमांक 6 पर चर्चा होगी, तो कृपया करके हम उसे पहले गा लेते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमाग्नम। नमो देव दामोदर कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेद्यक्षि दृश्या। नमो देवदामोदर प्रसीद प्रभो दुख जलब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेद्यक्षि दृशा।
अब साथ में सब गाएंगे।
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमाग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहनेश मां। ओ जया राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
यशोदा दामोदर की। इस दामोदर अष्टक के पाठ करने का बहुत महत्व है, विशेष करके दामोदर कार्तिक मास में। सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित बहुत प्रसिद्ध दामोदर अष्टक है। दामोदर भगवान का बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहुत प्रिय नाम है, और अष्टक का अर्थ है जो 8 श्लोक साथ में संग्रह करके जो भगवान की स्तुति में लगाया जाए इसको अष्टक कहा जाता है। यदि 10 श्लोक हो तो उसको दशक कहा जाता है, दशकम। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन के विषय में गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम की रचना की, जहां वो विनती करते हैं, याचना करते हैं गोवर्धन जी से कि कृपया करके आपके निज आपके पास निकट मुझे स्थान दे दे। निज निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम, हे गोवर्धन आपके निकट आपके समीप मेरा वास हो जाए। और ये 10 श्लोकों में रचना है इसलिए दशक कहा गया या दशकम कहा गया, और इसको ये 8 श्लोकों में विरचित है इसलिए अष्टकम कहा गया। अब ये दामोदर अष्टकम के श्लोक देखे जाए तो बहुत सुंदर है। सातवें और आठवें श्लोक के विषय में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सुंदर भक्त आएंगे अब और व्याख्या करेंगे। परंतु अब तक हम देखे हैं पहले दो श्लोक जो हैं दामोदर अष्टकम के, विशेष करके इसमें ब्रजवासियों की महिमा गाई गई है। कैसे मैया यशोदा भगवान को भी रुला सकती है। भागवत में वर्णन है, त्रया च उपनिषद भी च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमानं महात्म्यं हरिः सामान्यतात्मजम्। त्रया, तीन वेदों द्वारा, उपनिषद भी च, उपनिषद द्वारा 108 उपनिषद द्वारा 18 पुराणों द्वारा, तीन या चार, विशेष चार वेद हैं परंतु तीन प्रकार हैं उनके, तो त्रया भी कहा गया। जैसे त्रैविद्यामाम सोमपा पूत पापा, त्रया, तीन वेदों द्वारा जिनकी स्तुति की गई, 108 उपनिषद द्वारा जिनकी स्तुति की गई, और सांख्य योगैश्च सात्वतैः, सांख्य योग द्वारा जिनकी स्तुति की गई, और सात्वतैः शुद्ध भक्तों द्वारा जिनकी स्तुति की गई, उपगीयमानं महात्म्यं, जिनकी महिमा, जिनका महात्म्य गाया गया है, इतने ऐश्वर्यमान भगवान के विषय में कहा गया। वेद पुराण उपनिषद तो उनकी स्तुति कर लेते हैं, परंतु मैया यशोदा हरि ही सामान्यत आत्मजम्। अरे ये कोई भगवान नहीं, मेरा आत्मज है। और मैया का ये भाव कभी भंग नहीं होता था, कभी नहीं, कभी भी नहीं। जैसे वृंदावन के बाहर भगवान एक ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं तो साख्य भी दास्य पे घिर जाता है, वात्सल्य भी दास्य घिर जाता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित जब मथुरा गए, मैया देवकी तो खड़ी हो गई, हाथ खड़े करके, मैं आलिंगन करूंगी अपने बच्चे को, 11 साल बाद मैं दर्शन कर रही हूं। परंतु ये वात्सल्य प्रेम मथुरा का दास्य भाव में गिर गया जब भगवान ने कंस को मृत्यु के घाट उतारा। जब कंस का वध हुआ, मैया देवकी सोचने लगी, ये तो कोई पुत्र नहीं लगता, ये तो भगवान ही होगा, दिखने में तो बस 11 साल की आयु के लग रहे हैं पर ये भगवान है। स्तनपान कराने की इच्छा जो पहले थी अब सब खत्म हो गई, आलिंगन चुम्बन इत्यादि की जो इच्छा थी सब भस्म हो गया, खत्म हो गया। मैया देवकी अब खड़े हो गई हाथ जोड़कर, ये भगवान है। तो देखिए, एक प्रकाश, ऐश्वर्य के एक प्रकाश मात्र से मथुरा का वात्सल्य गिर गया दास्य भाव में। अर्जुन की बात करें कुरुक्षेत्र के युद्ध रणभूमि में, पहले तो सोचने लगे सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे सारथी ले चलो, जैसे ड्राइवर को कहते हैं ना, चलो गाड़ी चालू करो और एसी ऑन रखना। तो ये कहां से है इसका उद्गम स्थान, ये तो कृष्ण लीला से है, सब कुछ तो कृष्ण लीला से है। अर्जुन सोचने लगे ये मेरे सारथी हैं, फिर दूसरे अध्याय में सोचते नहीं नहीं ये तो गुरु हैं, आगे जाकर परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, अरे ये कोई गुरु नहीं है, साक्षात दोरंग है। तब अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, सखेति मात्वा प्रसमम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये नवापि। गीता के श्लोक में अर्जुन कहते हैं सखा इति मत्वा, आपको सखा मानकर प्रसभम युदुक्तम, कभी कभी दूर कटु वचन का भी प्रयोग हुआ है भगवान, कभी कभी हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, अजानता महिमानं तवेदम, आपकी महिमा को न पहचानते हुए न जानते हुए, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, कभी कभी तो घमंड, गांधीधारी हूं इस घमंड से, या कभी कभी प्रेम भाव से मर्यादा व्यतिक्रमण हुआ है भगवान। यच्छावा हासार्थम असत्कृतोपि, कभी कभी तो असत्कृत अर्थात हास्य परिहास भी हुआ है, आप पर हंसा हूं मैं, आपके साथ नहीं। यच्छावा हासार्थम असत्कृतोपि, कब विहार शय्यासन भोजनेशु, विहार करते समय, शयन करते समय, भोजन करते समय आप पे हंसा हूं, चुटकुले सुनाया हूं बाकियों पर ताकि वो आप पर हंसे। और भगवान इतना ही नहीं, एकोता वाप्या चुततत समक्षम, अकेले में करता तो बात अलग, मैं सबके सामने समाज में करता,
अब मुझे पता चला भगवान, वो चुटकुले मैं आप पर नहीं, आपके भगवत्ता को देखकर मुझे पता चल रहा है वो चुटकुले मेरे पर थे, मुझ पर थे। वो चुटकुले के जो विषय थे वो आप नहीं, मैं स्वयं था। वो हास्य परिहास जो हुआ आप पे नहीं, मुझ पर हुआ। भगवान आप असीमित भगवान हो, विभु आत्मा हो, मैं अणु आत्मा हूं, ये मैं समझ गया। अब देखो सखा थे, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, ये साख्य भाव का प्रतीक है। परंतु एक विराट रूप से देख के गिर गए, मैया देव की वात्सल्य से गिर गई, अर्जुन साख्य से गिर गए, और दास्य दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, ये सत्य बात है, रस रसिक बात है कि मैं आपके दास्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। परंतु ब्रज में एकदम विपरीत, ऐसा नहीं है कि भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं करते, इतना करते हैं फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम में, प्रेम कभी भंग नहीं होता, खंडन नहीं होता। भगवान तो कालिए दमन लीला में पानी में रहते हैं, कालिए पे नृत्य करने से पूर्व फंस गए और सोच रहे हैं अब चलो, क्योंकि भगवान ए ग्रेड आर्टिस्ट है ना, एक दो लोगों के सामने नृत्य नहीं करते, जब हॉल जैम पैक्ड हो जाए तब नृत्य प्रारंभ होता है। तब सोचे कि अब मैं काली के फणों में यदि स्थान ग्रहण करूं, यहां तो एक दो लोग उपस्थित हैं और वो भी मुझे इस परिस्थिति में देखकर होश खो बैठे, अचेत अवस्था में स्थित हैं। पहले बात फैले, ब्रजवासी आ जाए, एकत्रित हो जाए, तब तक काली तुम मुझे आलिंगन करते रहो। आचार्यगण तो लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से ये श्लोक उदित हुआ कि कालिया जब पानी के नीचे से ऊपर आया तो भगवान के चरण कमल से लेकर मुख कमल का दर्शन हुआ। ऐसे कमलों के घोर घनघोर वन को देखकर किसके मन में आएगा कि इनको ढसें, इनको मार दें। कालिया तो सोचने लगा, हे भगवान, यत करोषि यत अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप तो अर्जुन को कहें जो भी तुम जानते हो ना मेरे चरण में अर्पण कर दो। भगवान मैं तो दो ही चीज जानता हूं, अपने शरीर से मैं लपेट लेता हूं या डसता हूं। भगवान इसी को आलिंगन और इसी को चुंबन मान लेना। ब्रजवासीगण एकत्रित हो गए, देखे अब लाला तो ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ये नहीं सोचे कि अब ये नृत्य कर ही रहे हैं तो भगवान होंगे, लस्सी की तरह दावग्नि पी लेते हैं तो होंगे भगवान, मिट्टी खा लेते हैं और ब्रह्मांड का परिवर्तन कर देते, मिट्टी से ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं तो होंगे भगवान, पर नहीं। तभी भी ब्रजवासियों के मन में यही है, लाला पानी में इतने घंटों से रहा है, कभी ठंड ना लग जाए, कांपने ना लगे। ब्रजवासियों के प्रेम के कारण द्वादश आदित्य तिल में 12 सूर्य का विस्तार हुआ। तो पहले दो श्लोकों में दामोदरष्टक के ब्रजवासियों की महिमा गाई गई है। यदि भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करना है तो ब्रजवासियों के मन को आकृष्ट करना होगा, भगवान के भक्तों की महिमा गानी होगी। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मस्तुति करने लगे, नवमी इड्यते इत्यादि करने लगे, भगवान देख ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें तो लग रहा था समय घटा जा रहा है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा स्तुति स्तव स्तोत्र कर रहे हैं ब्रज में, मुझे तो अपने मित्रों सहित खेलना है कूदना है, ये क्या कर रहे हैं। मित्रगण भी वहां दूर बैठे बैठे देख रहे हैं, ये किनसे मित्रता बनाए हैं, ये है कौन व्यक्ति, बड़ा विचित्र, नहीं हमारे तो एक दो नेत्र हैं, एक मुख है, इनके तो देखो चार चार मुख, पता नहीं कोई दानव होगा। फिर सुने देखे तो वचनम शीलम आख्याति, किन्हीं के वचन से उनके अंदर के सोच विचार का स्मरण होता है, पता चलता है। तो देखें ये क्या बोल क्या रहे हैं, ये तो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रजवासी सखागण परस्पर हाथ लगाकर कहते हैं, सिर तो चार हैं लेकिन दिमाग एक भी काम नहीं कर रहा, अपने चोरी करने वाले लाला की स्तुति कर रहे हैं, ये तो जानते ही नहीं वास्तव में इनका अस्तित्व तो क्या है। और लाला भी बीच में देख रहे हैं सखागण की ओर, देखे ब्रह्मा जी बंद करो, तो कितनी स्तुति करेंगे आप, तो ब्रह्म संहिता गा चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे सखागण के साथ खेलना कूदना, मैं ब्रज में आया हूं खेलने कूदने के लिए, ये सहस्र शीर्ष पुरुष वैकुंठ में भी आप सुनाते हो, अब ब्रज के गलियों में सखागण के साथ मुझे क्रीड़ा लीला विलास विहार करने का मुझे सौभाग्य दे दीजिए। पर ब्रह्मा जी तो कर रहे हैं, फिर जब भगवान के मन को पहचान लिए तब कहने लगे हो भाग्यम नंद गोप व्रज उकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातम। दशम स्कंद के 14वें अध्याय का 32 33 34वां श्लोक, वृंदावन और ब्रजवासियों की महिमा गाई गई। जब भगवान के कर्ण रंध्रों में ये बात प्रविष्ट हुई कि आहा ये तो अब भक्तों की महिमा गाने लगे, तब मन आकृष्ट हुआ, बोले क्या कह रहे हैं आप। तब ब्रह्मा जी कहने लगे हे भगवान अहो भाग्यम अहो भाग्यम, दो बार कहे हैं अहो भाग्यम, बहुत भाग्य है, बड़ भाग्य है। किनका? नंद गोप व्रजऊ कसाम, ब्रजवासियों का। क्यों? यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण सनातन ब्रह्म आनंद स्वरूप, आनंद मयोभ्यासात रसो वही सह, रसो वही तस्मिन नहीं कहा गया, उनमें रस नहीं है, वो ही रस के मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे महान भगवान, ऐश्वर्यवान भगवान को ब्रजवासियों ने मित्र बना लिया। हाँ, बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य। आचार्यगण टीका में लिखते हैं नहीं नहीं दो बार कहा गया ना अहो भाग्य में, एक अहो भाग्य से तो बात बनती, अब दो दो बार क्यों कहना। बात यह है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान एक अहो भाग्य तो ब्रजवासियों का कि आप मिल गए, एक अहो भाग्य आपका कि आपको ब्रजवासी मिल गए। क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम का जो आदान प्रदान है आपको ना अयोध्या में प्राप्त है, ना वैकुंठ में प्राप्त है, ना मथुरा में प्राप्त है, ना द्वारिका में प्राप्त है, यदि प्राप्त है तो वृंदावन में प्राप्त है। उनकी उनका तो भाग्य है कि आप मिल गए, परंतु भगवान आपकी भी महिमा है इसमें, आपका भी भाग्य है कि आपको शुद्ध भक्त वृंदावन के मिल गए। आराध्यो भगवान ब्रजेशतना यस तद्धाम वृंदावनम। तो पहले दो श्लोकों में मैया यशोदा का यश गाया गया, फिर तीसरे और चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान आपको प्राप्त करना हो तो ये भाव भक्त पकड़ लें कि आपके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है कृष्णा ब्रूक्स नो कॉम्पिटिटर, अर्थात भगवान अकेले ही आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता भगवान आपके साथ थोड़ा गाड़ी बंगला मकान सब कुछ साथ में मैं पूछ लूं। भगवान कहते हैं या तुम नारायण पूछो या नारायण सेना, दोनों नहीं हो सकता। तो सत्यव्रत मुनि तीसरे और श्लोकों में कहते हैं भगवान वरम देव मोक्षम न मोक्षा, मुझे कोई और भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। जैसे हमारे वृत्रासुर जी भी कहते हैं न नाक प्रष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे भगवान यदि आपके संग से मुझे च्युत होना हो तो मुझे ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ध्रुव का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे सुतल का बलि भी मत बनाना और यहां का सार्वभौमता भी मत देना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, यहां का राज्य भी नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही कहते हैं कीट जन्म हो यता तुवद आश बहिर्मुख ब्रह्म जन्मी नहीं आश। यदि भगवत सन्मुख होना हो तो मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं, परंतु भगवत विमुख होकर मुझे ब्रह्मा करने की भी अभिलाषा नहीं, ब्रह्मा का पद ग्रहण करने की भी इच्छा नहीं। यही बात है उद्धव जी भी आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्म, किम अपि कुछ भी कहीं भी कैसे भी गुलमलता औषधि नाम, गुलमलता बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी तो दानगढ़ मानगढ़ भानगढ़ विलासगढ़ बनने को तैयार हैं, हमारे शंभु महादेव जी तो गोपीश्वर बनने को तैयार हैं, नारद मुनि तो नारदी गोपी बनने को तैयार हैं, कोई गोप से गोपी बनने को तैयार है, तो कोई ब्रह्मा से पत्थर बनने को तैयार है। भगवान आपको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब इतनी तीव्र उत्कंठा हो जाए तब भगवत प्राप्ति होती है। रामानंद राय जी कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति कियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतिर्न लभ्यते। भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र गुण एकमात्र इच्छा कि केवल भगवान, इनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। भगवान कहे क्या चाहिए, भगवान आपको, आपसे मैं आपको मांग रहा हूं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपसे आपको मांग रहा हूं। इसलिए कृष्ण भक्त एक बड़ो चतुर। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई राजा चलता है तो पीछे तो नौकर चाकर तो चलते ही हैं, अलग से नौकर चाकर की इच्छा रखने की क्या आवश्यकता, राजा को ही मांग लो, आगे पीछे चलते फिरते नौकर चाकर तो मिल ही जाएंगे, कृष्ण को ही मांग लो, उनके साथ भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत सब आ जाएंगे साथ में सब कुछ। तो तीसरे और चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, पहले और दूसरे में ब्रजवासियों की महिमा, विशेष करके मैया की महिमा, मैया यशोदा की महिमा, तीसरे और चौथे में फिर कहते हैं हे भगवान, या तीसरे में कृष्ण की महिमा और चौथे और पांचवे में कि मुझे कोई और वर नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरे में तो कहते हैं भगवान आपकी लीला परंपरा, ब्रजवासी महान तो आप भी महान, परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए, ये स्तर प्राप्त करने के लिए चौथे और पांचवे में कहते हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान आपका दर्शन चाहिए, आप चाहिए, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब छठवें श्लोक में कहते हैं, अब कृष्ण के मन को तो आकृष्ट कर लिए, ब्रजवासी को पुकारे, उनकी महिमा गाई, भगवान की महिमा गाई, फिर ये भी कह दिया कि मटका खाली करके आया हूं भगवान, फिर भगवान कहते हैं क्या चाहते हो। इसमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान एकमात्र इच्छा है कैसे भी करके इस जन्म में आपका दर्शन हो जाए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए मुझे, ये अभिलाषा, ये उत्कंठा। राय रामानंद जी कहते हैं ये एकमात्र, ये इच्छा जब तीव्र हो जाए उत्कंठित भाव से, लालसा भाव से जब पुकारे तब भगवान बंद जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी जब भाव भक्त के विशेष करके 9 प्रमुख लक्षण का वर्णन करते हैं तो कहते हैं उसमें एक है समुत्कंठा, इतनी उत्कंठा कि भगवान के दर्शन के बिना मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। जैसे हमारे बिल्व मंगल ठाकुर भी लिखते हैं नेत्रों को अर्पण करने के बाद जब नेत्रहीन हो जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामा हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर में। भगवान को 9 नामों से संबोधित करके कहते हैं हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामा हा हा। इंग्लिश में जो हा हा होता है वो लाफ्टर होता है, हंसी, परंतु संस्कृत में हा हा का अर्थ क्या अर्थ है, हाय हाय, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में, हे भगवान कब आपका दर्शन होगा, कब आपका दर्शन होगा। श्रील प्रभुपाद जी के परम गुरु के परम आराध्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें भगवान की के रूप सौंदर्य के देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान आकृष्ट हो जाए और ढूंढे कि भक्त कहां है। तो पहले तो ये भाव आ जाए कि भगवान को मैं प्राप्त करना चाहूं, फिर ही तो निस्वार्थ सेवा होगी, फिर निस्वार्थ सेवा होगी तब भगवान आकृष्ट होंगे, फिर इच्छा जागृत होगी उनमें कि ये भक्त कहां है। तो पहले तो इच्छा आ जाए कि ये ही करना है, ये भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो ये श्लोक में सत्यव्रत मुनि 4 चीज कहते हैं। पहली बात, श्लोक का प्रारंभ देखिए नमो से होता है। अब समय तो केवल और 25 मिनट ही है ना, 9 बजे ठीक है, प्रयास करते हैं 25 मिनट में ठीक। तो नमो शब्द है, नमः का अर्थ है झुकना, दंडवत देना, प्रार्थनामय भाव रखना। जैसे हम कहते हैं नमस्ते, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, नम अर्थात झुकना। तो पहले शब्द से ये भक्त को, साधक के जीवन में ये समझ आती है कि यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो प्रार्थना करना, भगवान के सामने झुकना ये अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के सामने झुके बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दंडवत देना, ठाकुर जी की विग्रह को प्रणाम करना, इसकी भी असीम महिमा है भागवत में और अन्य शास्त्रों में। जैसे हम देखते हैं मैया यशोदा जब मृद भक्षण लीला के समय विस्मित हो गई, वो सोचने लगी अरे ये हो क्या रहा है, लाला के मुख में क्या है, मुंह खोलो, कस्मात मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, क्यों खा लिए? ये नहीं पूछे खाए कि नहीं खाए, बोले क्यों खाए? तो लाला तो सोचे अभी मुंह तो खोल नहीं सकते, मिट्टी से भरी है, अब मुख खोल देंगे तो मिट्टी बाहर, तो झूठ कैसे बोले लाला? कहे नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नेत्रों से इशारा कर रहे हैं मैया, मैंने तो कुछ नहीं किया। वदंती तावका ये थे, आपके पक्ष लोगों ने कहा, अरे मेरे पक्ष तो सब झूठ बोल रहे हैं। अग्रज अपि अयम वदति, अरे आपके बड़े भाई भी यही बोले, अब धर्म संकट हो गया, अब ये तो कह नहीं सकते कि दाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर जिह्वा से धकल रहे हैं मिट्टी को ताकि मुख खोल सकते हैं, एकदम सीना टान के खड़े हो सके। एक बार सब ले लिए अंदर तो कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, देख लीजिए आप दूध का दूध और मिट्टी की मिट्टी, अब हो जाए आप देख ले। अब मैं उदाहरण देता हूं, कभी कभी तो ऐसे होता ना कि कोई मैया अगर मुझे बोले कि दूध बाहर रख देंगे तो खराब हो जाएगा, इसको फ्रिज में रख दो, तो बोले मैया ठीक मैं कर दूंगा। अब सुबह उठकर मैया पूछे दूध रख दिया अंदर में, बोले हाँ मैया रख दिया, पक्का पक्की बात है ना रख दिया ना, हाँ मैया रख दिया, शोर होना एकदम, तो मैं बोलूंगा मैया फ्रिज खोल के देख लेता हूँ आप ही देख लीजिए, तो भगवान सोचे ये प्लान वो भी यूज करे। मैया बोले मिट्टी खाए, बोले नहीं खाए, मिट्टी खाए नहीं खाए, मिट्टी खाए, देख लो ना मैया अंदर, तो भगवान सोचे इस बात पे मैया बोलेगी नहीं नहीं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो नहीं होगा मिट्टी। तो परंतु परब्रह्म के लिए ये योजना एकदम विपरीत हो गई, परब्रह्म सोचने लगे मैया बोलेगी ठीक है मुख बंद करो, विश्वास है मैया, जब लाला बोले मैं मुख खोल लेता हूं आप देख लो, मैया बोली ठीक है खोल लो अब मैं देखूं, अब अंदर देखे तो लाला सोचने लगे अब मैं देखूं मैया का कितना वात्सल्य प्रेम है, ब्रह्मांड का दर्शन करा दूं, कुछ भंग नहीं हुआ। मैया तो सोचने लगी अरे 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 मैं तो सोची लाला ने मिट्टी खाया, देखो तो पूरे ब्रह्मांड को खा लिया, कितना नटखट बालक है ये, मैं तो सोची बस थोड़े कण मुंह में ले लिए होंगे, देखा तो पूरा ब्रह्मांड चबा रहा है ये बच्चा, खाने के लिए ब्रह्मांड और पीने के लिए दावग्नि, कैसा बच्चा है ये। आचार्यगण विशेष करके चक्रवर्ती पाद लिखते हैं लाला जो भी लीला करते हैं ब्रज में ये केवल मैया को ये बताने के लिए मेरा शरीर रुष्ट पुष्ट है, ये बताने के लिए मेरा मेरे अधर जो है ना ठीक से मैया पुष्ट हो रहे हैं, ये बताने के लिए पुतना का वध हुआ, ये बताने के लिए पैर भी ठीक है, आपके स्तनपान आपके दूध के कारण शरीर एकदम रुष्ट पुष्ट हो रहा है, मैया देखो पैर भी ठीक से बढ़ रहे हैं एकदम शक्तिशाली बलवान हो रहे हैं, ये बताने के लिए बस शकट का भंजन हुआ, हाथ भी बढ़ रहे हैं मैया ये बताने के लिए तृणावर्त को मार दिया, और अपने पाचन शक्ति को बताने के लिए मृद भक्षण हुआ। तो ये लीला में जब मैया सोचने लगी आश्चर्यचकित हो गई ये तो मृद था कि ब्रह्मांड था, उस समय मैया दंडवत दे देती है विष्णु मूर्ति को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जब भी भक्त को कोई शंका हो जाए ना ठाकुर जी के सामने झुकने पर शंका का निवारण हो जाता है, कोई भी समस्या हो समाधान हो जाता है भगवान के सामने झुकने पर। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में मैया यशोदा सिखा रही है साधक को कि जब वो दंडवत दे दे ठाकुर जी के सामने सब समस्या से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं गजेंद्र जी भी जब स्तुति करें तो गजेंद्र की स्तुति में दो बहुत प्रमुख लक्षण है जो अन्य स्तुतियों में नहीं पाया जाता, एक है भगवान नाम और दूसरा है भगवान प्रणाम। नाम और प्रणाम, नमः अर्थात प्रणाम, शांताय घोराय मूढ़ाय गुणकर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च, तो नमः आता है अर्थात गजेंद्र जी भी झुक रहे हैं प्रणाम दे रहे और नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। भागवत के अंतिम श्लोक में भी यही वर्णन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जो व्यक्ति नाम उच्चारण करे और तन से ठाकुर जी के सामने प्रणाम करने की चेष्टा करे, नाम और प्रणाम से भव चक्कर भव प्रपंच का चंगुल जो फंसे हैं वो भस्म हो जाता है, कट जाता है। तो ये बताने के लिए सत्यव्रत मुनि प्रारंभ करते हैं नमः से। श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनके दिग्दर्शनी टीका में लिखते हैं कि जब भी नमः का प्रयोग आए तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, डेटिव केस का प्रयोग होना चाहिए। पर यहां देखते हैं ना देवाय है, ना दामोदराय है, ना अनंताय है, ना विष्णवे है, सब देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु ऐसा प्रयोग है। क्यों तुभ्यम क्यों नहीं? सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि सत्यव्रत मुनि इतने भाव विभोर हो गए कि संस्कृत के व्याकरण को पास दूर रख दिए और केवल भाव से चल रहे हैं, केवल भाव से चल रहे हैं। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि भगवान के इस लीला से इतना मन आकृष्ट है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहा, या इतना भयभीत हो गए कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने में भी डर लग रहा है उन्हें, ऐसे कहते हैं। फिर कहते हैं यहां विशेष करके भगवान के छह नामों का प्रयोग है। कौन कह सकता है कौन से नाम है भगवान के? देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु जाल अवधि है, ये जलावधि नहीं। और बताइए छठवा कौन सा? हाँ जी पांच ही हैं। कौन से भक्त है वो? महाराज जी बैठे हैं वहां। वृंदावन चंद्र महाराज की। तो भगवान के छह नामों का यहां प्रयोग है, देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु और ईश। ईश दिखता है ना यहां? गृहाण ईश प्रयोग है। तो ये छह नामों की व्याख्या जब करें, श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं देव शब्द का विशेष करके दो अर्थ हैं। एक है ज्योत्यमान, अर्थात जिनसे 33 करोड़ देवता निकले वो भगवान, और दूसरा अर्थ है क्रीडमान, जो खेलते हैं कूदते हैं ब्रज में, ये भी देव। और यहां इस लीला में ये दोनों देखा जाता है। कुबेर के जो आत्मज हैं मणिग्रीव और नल कुबेर, इनका उद्धार होता है, अर्थात पहले अर्थ से देव हैं, और दूसरे अर्थ से देव इसलिए हैं क्योंकि मैया को यहां वहां भगा रहे हैं, लाला खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं यहां ये लीला में, तो सब कुछ चल रहा है, नवनीत तस्करी चल रही है। तो देव के दोनों अर्थ हैं, परंतु एक तीसरा अर्थ है जो सत्यव्रत मुनि अपने भाव अनुसार जोड़ रहे हैं, वो क्या है? देव दिव धातु से आता है, अर्थात दिव्य। हे भगवान आपके इस दिव्य रूप सौंदर्य का रसपान मैं सदैव करते रहूं। हे भगवान जो ज्योत्यमान हो जिनसे 33 करोड़ देवता आए, हे भगवान जो क्रीडमान हो जो खेले खूदे विहार विलास करे ब्रज में, वो भगवान तीसरे अर्थ से आपकी दिव्य रूप सौंदर्य सदा सर्वदा मेरे हृदय में बस जाए, देव। अब आगे दामोदर तो जानते ही हैं सब, दामोदर मास है, कई बार सुने हैं, जिनके उदर में दाम लगा हो, मैया का प्रेम वश लगा हो। यहां इस शब्द का श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ लिखते हैं, सत्यव्रत मुनि चाहते हैं कि भगवान का सदैव सर्वदा दर्शन होता रहे। तो दामोदर का क्या अर्थ है यहां? दामोदर का ये अर्थ है, भगवान आप वो भगवान हो जो भक्त के इच्छा के अधीन हो जाते हैं, भक्त जो इच्छा करे उसके अधीन आप हो जाते हैं भगवान। वृत्ति वश्यता ये आपका प्रमुख गुण है, प्रेयसी वशीभूत ये आपका एक गुण है। उसी प्रकार सत्यव्रत मुनि कहते हैं मैं भक्त तो नहीं पर मैं इच्छा कर रहा हूं भगवान, असंभव को संभव करने वाले आप हो दामोदर। और बाकी दो शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है, सनातन गोस्वामी लिखते हैं अनंत, अनंत अर्थात असीमित हो, जिनका अंत ना हो, वो भी देखिए बद्ध अवस्था में स्थित है। जो नित्य मुक्त है वो नित्य बद्ध हो गए मैया की लीला में। और विष्णु, विष्णु अर्थात जो सब कणों में व्याप्त हो, विशते व्यापनोति इति विष्णु, जो सृष्टि भी करे, सृष्टि में प्रवेश भी करे और विस्तार रूप में हर कण में वास करे, जो हर कण में वास करे, मैया ने उसको एक स्थान में खड़े करके रुलाया। तो देखिए असंभव संभव हो रहा है, जो हर कण में व्याप्त हो वो एक जगह पे खड़े हैं और जो मुक्त हैं वो बद्ध हो गए। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं आप वो दामोदर हो जो अनंत और विष्णु हो, अर्थात हर कण में होकर एक स्थान में स्थित हैं और उसी प्रकार अनंत मुक्त होकर भी बद्ध हैं। असंभव को संभव करने वाले दामोदर जी, मेरे इंद्रियों द्वारा आपको मैं पा नहीं सकता, परंतु एक ऐसी बात है जिससे आपको मैं प्राप्त करूं। मेरी इंद्रियां आपको पकड़ नहीं सकती, परंतु भगवान मैं इच्छा करता हूं कि आप मेरी इंद्रियों को पकड़ ले। जब कृष्ण भगवान वसुदेव के मन में प्रवेश करते हैं तो आचार्यगण टीका लिखते हैं कि क्यों भगवान वसुदेव के मन में प्रवेश करके हमें क्या सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं क्योंकि भगवान थक गए थे गजेंद्र की स्तुति सुनकर कि आप इतने नमो विराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, आप इतने दूर हो कि हमारी इंद्रियां आपको नहीं पकड़ सकती। भगवान इंद्रियेभ्यो परो यत् अर्थेभ्यो च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेर आत्मा महान परः। कठोपनिषद भी यही कहता है, गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक भी यही कहता है, हमारे इंद्रियों द्वारा हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी यही कहते हैं, न भवेत ग्राह्यम इंद्रियै, हमारी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। परंतु वसुदेव के मन में प्रवेश करके भगवान ये साधक को सिखा रहे हैं, तुम इंद्रियों से मुझे नहीं पकड़ सकते, परंतु वसुदेव के तरह यदि मन को पवित्र रखे कोई बात नहीं, मन मुझे नहीं पकड़ सकता पर मैं उस मन को पकड़ लेता हूं। भक्त मुझे पकड़ नहीं सकता, परंतु पवित्र मन और इंद्रिय रखे तो मैं भक्त के इंद्रियों को पकड़ लेता हूं। तो सत्यव्रत मुनि ये प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देव। देखिए हर शब्द पे कितनी गहराई है, कितने कितना भाव है। नमो देव दामोदर, कौन से दामोदर, जो अनंत और विष्णु है। प्रभु, प्रभु कौन है, जो सृष्टि करे, संरक्षण करे और नष्ट विनष्ट कर दे, वो प्रभु है। और ऐसे अनंत प्रभु जिनसे निकले उनको महाप्रभु कहते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु प्रभु हैं, परंतु उनके स्रोत, उनके उद्गम स्थान को महाप्रभु कहा गया। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, भागवत 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 33 और 34वां श्लोक। महापुरुष, महा प्रभु, तो प्रभु अर्थात जो सृष्टि करे, जो पालन रक्षण करे और जो नष्ट विनष्ट कर दे, इससे क्या बात है। सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं भगवान यदि आप सृष्टि कर सकते हैं तो मेरे हृदय में भी आपके रूप का स्फूर्ति के स्फूर्ति की सृष्टि भी तो बना सकते हैं आप यहां अवतार ले सकते हैं। बाहर अवतार लेते हैं तो यहां अवतार लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको, कृपया करके आ जाए। और संरक्षण भी करते हैं, ये जो तीव्र इच्छा है ना मेरे मन में, इसकी संरक्षण कीजिए भगवान। और नष्ट विनष्ट करते हैं आप, सृष्टि का नष्ट विनष्ट करते हैं तो मेरे अपराध और अनर्थ को भी नष्ट विनष्ट करते हैं भगवान। मेरे मन में बहुत संशय, संशय से भरा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में जल रहा हूं मैं, भगवान नष्ट विनष्ट कर दें। प्रभु संबोधन किया है इसलिए प्रभो हो गया, वो प्रसिद्ध प्रभो। क्यों भगवान पूछ रहे हैं, अच्छा तुम तो मेरा वर्णन कर रहे हो कि मैं देव हूं, दामोदर हूं, अनंत हूं, विष्णु हूं, प्रभु हूं, ईश हूं, तुम कौन हो बताओ, बताओ तुम कौन हो और कहां स्थित हो और क्यों प्रार्थना कर रहे हो। तो फिर अपना संबंध ज्ञान बताते हैं, भगवान आप वहां हो। जलाब्धिमग्नम, दुख जलाब्धिमग्नम, मैं दुख के महासागर में डूब रहा हूं भगवान। और यही बात है, हर आचार्य जब स्तुति करते हैं ना नम्र विनम्र भाव से, और मुख से स्तुति नहीं करते हृदय से करते हैं। शब्द आया है बत, बतरता हाय हाय, जैसे अहो बतश्व पचतो गरीयान यज्जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक भागवत। बत बत शब्द का प्रयोग आया, हाय हाय, अपना दुर्दशा बताते हुए नम्र भाव से सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, भगवान मैं जल रहा हूं, दावग्नि संसार के दावग्नि में मैं जल रहा हूं। चक्रवर्ती पाद भी तो यही लिखते हैं, संसार दावान अलली ढलों का, जल रहा हूं, हम जल रहे हैं। यहां भी वो कह रहे हैं मैं डूब रहा हूं, दुख के महासागर में मैं डूब रहा हूं। आदि शंकराचार्य जी भी यही लिखते हैं, संसार वृक्षम अघबीजम अनंत कर्म शाखायुतम करण पत्रम अनंग पुष्पम आरूय दुख फलिनम पतितम दयालुम लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नृसिंह मुझे कृपा करके हाथ दे, सहायता करें। लक्ष्मी नृसिंह पूछे क्यों आप कहां हो, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं संसार वृक्षम, मैं उस वृक्ष पे खड़ा हूं जिसका नाम संसार है। संसार वृक्षम आघ बीजम, जिसका बीज आघ है अर्थात पाप है, और कई शाखाएं हैं, शाखा क्या है मेरे कर्म, और पत्र भी हैं, पत्ते भी हैं, ये कौन से काम, काम वेग, काम वासना, और भगवान एक फल भी है, ये फल कौन सा दुख, इसको चक चक कर मैं गिर रहा हूं नीचे बारंबार जन्म जन्मांतर, कृपा करके मुझे हाथ की सहायता दे। शंकराचार्य ये लिखते हैं। चलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती भी चैतन्य चंद्रामृत में यही कहते हैं, संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करै कवलीकृतस्य दुर्वासना निगदितस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। शंकराचार्य जी ने तो हाथ मांगा, प्रबोधानंद सरस्वती ने चरणी मांग लिया, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, हे चैतन्य चंद्र कृपा करके आपके चरण कमल मेरे सिर पे रख दें, मुझे कृपा करके सहायता दें। चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती से पूछे आप बताओ कहां हो, तो कह रहे लगे संसार दुख जलदौ पतितस्य काम, हे भगवान संसार के दुख जलावधि महासागर में मैं डूब रहा हूं, पानी में मैं डूब रहा हूं, वो पानी दुख है संसार का, और जब मैं डूब रहा हूं तो नीचे मगरमच्छ आ रहे हैं मुझे खाने, वो मगरमच्छ कौन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और मैं जब प्रयास करूं छुटने का तो हाथ और पैर बंधे गए, क्यों अनंत पाप प्रवृत्ति बस गई है चित्त में, तो हाथ और पैर भी बंधे गए, अब मैं क्या करूं भगवान ऐसी अवस्था में, मैं डूब रहा हूं तैरना नहीं जानता, यहां नीचे मगरमच्छ खाने को आतुर है, हाथ और पैर बंधे हुए, इस समय जब मैं डूब रहा हूं तब नेत्रों से देखता हूं एक व्यक्ति है, देखते हुए कि कोई यदि डूबे तो मैं सहायता करने को तैयार, तब मैं हाथ खड़े करूं, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु है। कली के दुख महासागर में मैं डूब रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मगरमच्छ के रूप में चबाने को आतुर है, पाप प्रवृत्ति के कारण हाथ और पैर बंधे गए, महाप्रभु मैं हाथ खड़े करके आपको पुकारता हूं। देखिए कैसी प्रार्थना है, लालसामयी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना है, सब यही बोलते हैं मैं डूब रहा हूं भगवान। हमें हमारे मुकुंद माला स्तोत्र में देख लीजिए, कुलशेखर आलवर भी यही कहते हैं, हे मर्त्या परमं हितं श्रुणु तव वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिता नाना ज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायित्यमुं स मंत्रं प्रणवं प्रणाम सहितं प्रावर्थयत्वं मुहुः। मुकुंद माला स्तोत्र का 16वां श्लोक है। कुलशेखर जी लिखते हैं संसार नामक जलधि महासागर में मैं डूब रहा हूं, दुख नामक महासागर में मैं डूब रहा हूं, मैं तो अंदर गया और वहीं रह गया। कुलशेखर जी लिखते हैं सम्यक प्रविश्य स्थिता, अरे तुम तो पानी में ऐसे ही चले गए थे, ये कहते हुए कि तुम पुनः लौटोगे, देखा तो तुमने वहीं इस पानी नामक संसार में घर बना लिया, अरे लौटो, कैसे लौटो, कैसे पुनः आऊं। तो कुलशेखर जी लिखते हैं केवल दो चीज करना है, पहली बात तो मैं ये जानता हूं मैं वो जानता हूं, कपोल काल्पित धारणाओं को बाहर करें, और दूसरे में नाम और प्रणाम का आश्रय लें, बस विग्रह के सामने प्रणाम करें और सतत नाम रटें, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। यहां सत्यव्रत मुनि केवल ये नहीं कह रहे कि मैं डूब रहा हूं, वो कहते अति दीनम। देखिए हाँ, अति दीनम कृपा दृष्टि वृष्ट्य या वृष्टि अति दीनम, और फिर नीचे कहते हैं अज्ञम, मैं अज्ञानी हूं, अति दीन हूं, जल रहा हूं, डूब रहा हूं, भगवान आप केवल सहायता कर सकते हैं। छह नामों से संबोधन है और दंडवत दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं डूब रहा हूं, फिर अंततो गत्वा भगवान कह रहे हैं ठीक है आप नाम भी पुकारे, दंडवत भी करे, आपकी परिस्थिति का आप वर्णन भी करे, क्या चाहते हैं मुझसे, क्या चाहते हैं? तो वो कहते हैं भगवान मैं आपसे इस श्लोक के माध्यम से चार चीज भीख मांगता हूं, याचना कर रहा हूं चार चीज की, क्या कर रहे? भगवान बोल रहे ठीक है बताएं एक एक करके। बोले प्रसीद, पहली बात तो आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। कल मुझे एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक शुद्ध वैष्णव लिखते हैं अपनी पंक्ति में, भगवान आप हो परम पवित्र, मैं हूं अधम पापी, परंतु भगवान मैं जैसा भी हूं मैं आप ही का हूं। जब आपका मैं नाम सुनता हूं कि आप भक्त वत्सल हो तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है कि आप केवल भक्तों के लिए वत्सल्यता दिखाते हैं परंतु मैं तो भक्त नहीं हूं। फिर जब नाम आपका सुनता हूं कि आप दीन दयालु हो फिर भी हृदय बहुत दुखी हो जाता है, क्यों? दीन हो और माने तो आप दया करें, मैं तो दीन हूं पर मानने को तैयार नहीं। परंतु भगवान जब मैंने जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ आपका नाम सुन लिया कि आप जगन्नाथ हो, आप जगत के नाथ हो, मैं जगत का निवासी हूं, अगर प्रजा राजा के पास ना जाए तो कहां जाए भगवान, मैं जैसा भी हूं अनर्थों से युक्त हूं, प्रभु आप ही का हूं, आप मुझे संभालो। प्रसीद, भगवान जैसा भी हूं आप मुझे कृपा करके त्यागे ना, प्रसीद आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। देखिए ना, इस जगत में भी देखा जाता है, देखा जाता है इस जगत में भी कि जब बच्चा खेलता खूलता रहता है तो पिता गोद में रख के खिलाते हैं, खेलते हैं, परंतु थोड़ा मलमूत्र त्यागे तो पिता उठाकर बच्चे की मैया को बुला के कहते हैं जरा देखना, जरा थोड़ा कुछ मलमूत्र देखिए थोड़ा। अब मैया ये नहीं कहती कि पहले अपने आप को साफ करो, शुद्ध हो जाओ, फिर मेरे पास आओ, मैया लेती है जैसा भी हो बच्चा, मल मूत्र से भरा हो मैया लेती है, मेरा बच्चा है उसका मलमूत्र है, मलमूत्र ये प्रिय है मेरे लिए क्योंकि मेरा बच्चा प्रिय है मेरे लिए, मां लेती है प्रेम से, बच्चे को शुद्ध करती है, स्नान कराती है और इतना पाउडर ऑर्डर लगाकर इतना अब सुंदर बनाती है, जो पिता ने पहले त्यागा ना वो पिता कहते आ जा जरा, और पिता ही नहीं पड़ोसी आके कहते हो अरे कौन वो बहुत प्यारा बच्चा है। अब देखिए अगर मां वैसे ही छोड़ी होती तो क्या ये आकर उल्लू उल्लू करते? मां प्रेम करती है बच्चे से जैसे भी क्यों ना हो, मल मूत्र में पड़ा हो फिर भी मेरा बच्चा है, ये भाव है सत्यव्रत मुनि का, भगवान मैं अनर्थों में भरा हूं प्रसिद्ध फिर भी आप मुझे स्वीकार करें, ये पहली बात। अब दूसरी बात कृपा दृष्टि, पहली बात आप मुझसे प्रसन्न हो जाए, दूसरी बात आप कृपा करें और दृष्टि प्रदान करें, कृपा दृष्टि। भगवान बोले कृपा दृष्टि, हाँ भगवान कृपा दृष्टि, आपके दृष्टि में बहुत क्षमता है। देखिए कैसे भगवान पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, स ऐक्षत, तैतरीय उपनिषद ने कहा भगवान ने केवल दृष्टिपात किया बस। योगिंद्र मुनिंद्र यहां चर्चा कर रहे हैं कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उत्तर आया स ऐक्षत, उन्होंने केवल दृष्टिपात, ठीक दृष्टिपात किया होगा तो सृष्टि हुआ होगा, चलो सृष्टि तो कर लिया, अब रक्षण भी तो दृष्टि से होता है, कैसे? भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र, यदि सूर्य नहीं होते चंद्र नहीं होते तो जीवन तो असंभव है, और नष्ट विनष्ट भी भगवान की दृष्टि करती है, जैसे कालिय दमन लीला में भगवान के मित्र यमुना के दूषित जल को पान कर लिए, कृष्णा बुक में तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं दृष्टिपात मात्र से विष को बाहर कर दिया भगवान ने। जब सृष्टि कर सकते हैं दृष्टि से, संरक्षण कर सकते हैं दृष्टि से, नष्ट विनष्ट विनाश कर सके हैं दृष्टि से, सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान क्या आप भक्ति की सृष्टि यहां नहीं कर सकते हैं दृष्टिपात से? क्या आप मेरी इच्छा का संरक्षण नहीं कर सकते दृष्टि से? मेरे अनर्थों को नष्ट विनष्ट नहीं कर सकते दृष्टि से? भगवान आपकी दृष्टि मात्र की इच्छा रखता हूं और कुछ नहीं। वो जीवन आ जाए कि मैं आपको इतना पुकारूं कि आप मुझे देखें। प्रभुपाद जी के एक प्रमुख शिष्य एक बार मुझे बता रहे थे, परम सौभाग्य था उनकी सेवा करने में, तो मुझे बता रहे थे जब प्रभुपाद जी आते थे हमारे मंदिर, इतने भक्त होते थे और हर भक्त में ये इच्छा होती थी कि प्रभुपाद जी मुझे एक क्षण के लिए देख ले बस। तो प्रभु कहने लगे, वो महाराज जी कहने लगे कि मैं क्या करता था पता है? मैंने बोला महाराज जी बताइए। बोले गुरु पूजा के समय मैं ऊंचे ऊंचे छलांग लगाता था, सब कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं, मैं छलांग लगाता था ताकि प्रभुपा जी देखे इस सभा में कौन अधिक छलांग लगाए। हाँ हाँ ये बात है। वो कहते और बात सफल हो गई, मैं इतना छलांग लगाया प्रभुपा जी मुझे बुलाकर बोले व्हाई आर यू जंपिंग सो हाई, इतना ऊंचे ऊंचे छलांग क्यों लगाते हो? तो महाराज जी कहे, तो ब्रह्मचारी थे, कहने लगे प्रभुपा जी मैं यही चाहता हूं कि आप एक बार कृपा दृष्टि कर दे। प्रभुपा जी कहे जिस दिन तुम इस्कॉन में आ गए उसी दिन कृपा दृष्टि हो गई। तो कहते पहली बात आप मुझसे प्रसन्न हो जाए, दूसरी बात आप कृपा दृष्टि प्रदान करें। अच्छा कृपा दृष्टि, अब तीसरी बात अनुग्रह करें मुझ पर। बत अनुग्रहण, अनुग्रह करें मुझ पर भगवान, मुझ पर अनुग्रह करें। देखिए कई लोग कहते हैं मेरे पत्र में, जन्म पत्रिका में तो राहु है, केतु है, शनि है, ये है, वो है। अरे कुछ नहीं है, कोई ग्रह के अधीन है तो कोई अनुग्रह के अधीन है। कई कहते हैं अरे भक्ति करने पर क्या ग्रस्त जो परिस्थिति है नष्ट विनष्ट हो जाएगी? अरे अवश्य होगी, शनि पे शनि लग जाएगा, राहु पे राहु लग जाएगा, ग्रह पे ग्रह लग जाएगा जब अनुग्रह के अधीन हो जाए। उनके अधीन हो जाए तो कहते हैं आप कृपया करके अनुग्रह करें, कृपया करके अनुग्रह कर दें। तो भगवान कहते हैं क्या अनुग्रह चाहिए आपको? पहली बात तो प्रसन्न हो जाए, दूसरी बात आप कृपा दृष्टि प्रदान करें, फिर आप अनुग्रह करें। क्या अनुग्रह चाहिए आपको भगवान? एध्यक्षी दृश्य, कृपया करके वो दिन मेरे जीवन में आ जाए कि मैं नेत्र खोलूं और आप मेरे सामने हो। सत्यव्रत मुनि कहते हैं इसके अतिरिक्त तो कोई इच्छा ही नहीं है मुझे भगवान, आपको पाना चाहता हूं, आपके दर्शन हो जाए, एकमात्र दर्शन हो जाए। देखिए हमारे आदि शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में कि मैं नेत्रों से देखूं और भगवान आप मेरे समक्ष उपस्थित हो, कब होगा वो दिन? गोवर्धन प्रस्थ नवाम्बुवाह कलिंद कन्या नवनील पद्मम वृंदावन उदार तमाल शाखी तापत्रयस्याभिभवं करोतु। रूप गोस्वामी पद्यावली में वर्णन करते हैं, कृष्ण मैं आपको कैसे वर्णन करूं, जब आप गोवर्धन के शिखर पर खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नवनील मेघ वहां अब उपस्थित हो, वर्षा करने के लिए आतुर एक मेघ खड़ा हो। फिर जब आप यमुना के पानी में छलांग लगाते तो ऐसा लगता है कि नवनील पद्म का जन्म हुआ हो। भगवान जब आप वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं और खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाल वृक्ष ही खड़ा है। भगवान सदैव सर्वदा ये तीन रूप मेरे नेत्रों के समक्ष, मेरे नेत्रों के सामने सदैव उपस्थित रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नेत्रों से जिनसे भगवान का दर्शन हो वो उत्तम है, उत्तम है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या धारा दी है हमें, क्या धारा दी है हमें, प्रातः काल में उठकर भगवान को प्रणाम करने की पद्धति, विग्रहों के दर्शन करने की पद्धति, नाम उच्चारण करने की पद्धति, भक्तों का संग पाने की पद्धति, इतना सुंदर अवसर है। सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं कि ये चार चीज वरदान रूपी आप दे दे भगवान, मेरे से प्रसन्न हो जाए। तो ये चार चीज मांग रहे हैं, कि कृपा करके ये चार चीज आप मुझे प्रदान करें भगवान, इसी से मैं प्रसन्न हूं। तो अपनी परिस्थिति बता रहे, वरदान मांग रहे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और नमः से प्रारंभ करके दंडवत दे रहे हैं। तो एक बार मिलकर हम सब गीत गा लेंगे, छठवां श्लोक, फिर प्रसाद की ओर चले।
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहानेश माम अज्ञं मे दक्षी दृश्य।
श्री श्री यशोदा दामोदर की, राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।